क्योंकि अनन्य वाला बोल है, वो चाहे वो मुंह से बोले और चाहे नहीं बोले, हमें अपनी तरफ से लगाना है कि ये अन्य अन्य है और अन्य अन्य नहीं। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, महावीर और महावीर अन्य अन्य है कि अनन्य, अब एक मतलब महावीर और मारीच, तो कहते क्या बात करते हो, कहां मारीच, जैन धर्म का कट्टर विरोधी जिसने अपने आदिनाथ भगवान का सामने जबकि विरोध किया और उनको इंद्रजालिया बताया, क्यों? और कहां महावीर, आदिनाथ भगवान की हर बात का आंख मीच के समर्थन करने वाले, जो उनने वस्तु का स्वरूप बताया था वही वस्तु का स्वरूप महावीर ने बताया। एक अपेक्षा तो ये है, एक कौन सी अपेक्षा है, महावीर अन्य है और महावीर अन्य, इसमें क्या होगा, महावीर से द्वेष और महावीर से प्रेम। बात सच्ची है, क्योंकि महावीर महावीर है, महावीर महावीर मालिक है, मालिक महावीर का है, और फिर वो कहते हैं कि आत्मा की दृष्टि से देखो तो महावीर ही मालिक है और मालिक ही महावीर है, दोनों अनन्य है। अनन्य है माने एक है, जो अपने अंदर अंदर में भेद होता है उसको अन्य कहते हैं, और जो पर द्रव्य के साथ में भिन्नता की बात आती है उसे पृथक कहते हैं। पृथक में और अन्य में फर्क है, समझ तो वो कहते हैं कि मनुष्य देव नहीं थी, एक ही थी, पहले मनुष्य था अब वो देव हो गया, तो अब वो बोई है कि अन्य है, तो वो कहते हैं एक नए से वो अन्य अन्य है, देव अन्य है और मनुष्य अन्य है, और दूसरे नए से वो ही जीव है वो अनन्य है, तो ये अन्य अन्य और अनन्य वाला बोल वो समझा रहे थे, हम समझ रहे थे कि वो निषेध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मनुष्य है ही नहीं, नरक है ही नहीं, देव है ही नहीं, देव है ही नहीं, वहां वो जो निषेध कर रहे हैं उनके अस्तित्व का निषेध नहीं कर रहे, क्या कर रहे, उनके अनन्यत्व का निषेध कर रहे हैं, अन्य अन्य है ऐसा कह रहे हैं ना, और जब ये कहते हैं कि अन्य अन्य नहीं है एक ही है, तो अन्य अन्य पने का निषेध कर रहे हैं, भेद का निषेध कर रहे हैं, भेद का व्यवहार व्यवहार का निषेध कर रहे हैं, तो वहां उद्देश्य दो तीन अभी थे ना, एक मिट्टी का सकोड़ा का ब्रांड किया था, तो कह रहे मिट्टी निकली खदान से और उससे फिर हमने सकोड़ा बनाया, घड़ा बनाया और कई तरह के जो बर्तन होते हैं पुराने जमाने में चलते थे, इसलिए उनके वो नाम भी चलते थे, आचार्य देव ने भी लिखे हैं, करना नहीं ना, लेकिन एक कहते हैं कि सकोड़ा अन्य है और घड़ा अन्य है, समझ रहे ना, क्योंकि सकोड़े का काम घड़ा नहीं देगा और घड़े का काम सकोड़ा नहीं देगा, सकोड़ा समझ रहे तुम्हें रामपात जो कह रहे थे, लेकिन हमारे यहां तो रामपात अलग की है और सकोड़ा अलग, सकोड़ा रामपात रामपात तो उसे बोलते हैं जो आपने देखा होगा शादी बाजी में पानी परोसते हैं ना, तो एक वो सामने का होता है उसमें कभी वो लगी रहती है उससे, तो प्याऊ पहले वो पानी पिलाते हैं ना, उसको राम पात्र बोलते हैं, सर यहाँ सकोरे को बोलते होंगे, और सकोरा एक ऐसी चीज है जैसे हम अपने सामान वामान रखते हैं ना, आप समझ गए ना, सर वो झगड़े की बात नहीं है, लेकिन अभी तो सिर्फ यहां ये कहना चाहते हैं कि ते ये सब क्या है? मिट्टी ही है, सकोरा ही मिट्टी है और घड़ा भी मिट्टी है।
यूनिवर्सल
ट्रुथ। हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इससे निश्चय हो गया, जो यूनिवर्सल उसको पकड़े उसका नाम निश्चय है। तो फिर दोनों एक ही है, एक ही है। जब एक बोलोगे तो फिर सकोरा ही बोल सकते, घड़ा भी बोल सकते, फिर मिट्टी बोलना पड़ेगा। अरे सब मिट्टी है, ये मिट्टी की काया, तो वो सकोरा और हम भी एक ही है, जो मिट्टी की काया है ना, समझे ना। अब ये फिर मैं कल शाम को मैंने कहा था ना कि वो पुण्य पाप में क्या फर्क है, महामंत्री के विषय तो एक से ही भोगते हैं ना। अब एक का मोटा बुरा शरीर, एक का तंदुरुस्त शरीर, एक का मोटा ताजा शरीर, एक का मतलब कुरूप है, तो ये सब जितने भेद हमें दिखाई दे रहे हैं ना, जितने व्यक्ति हैं उतने भेद सब अन्य अन्य हैं। और जैसे भैया कहा अन्य सब मिट्टी है ना, ये मिट्टी के पुतले सब, हम तुम सब मिट्टी के पुतले हैं ना, ये थोड़े भोले काले से क्या फर्क पड़ता है, ये बात कहते हैं ना। तो वो अन्य अन्य और अनन्य ये तो मिट्टी पे घटित किया, फिर उन्हें आत्मा पे घटित किया। पर आत्मा पे घटित एक किया कि जितनी भी परिणाम हैं, तो खासकर उन्होंने यहां पर मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं, द्रव्य पर्याय को लिया, व्यंजन पर्याय को लिया। द्रव्य पर्याय व्यंजन पर्याय समझ नहीं गया, आपने पढ़ा होगा प्रदेश अधिकों के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, वास्तव में द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेश अधिकों के विकार को तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आकार की मुख्यता होती है, तो प्रदेश अधिकों आकार में हेतु है इसलिए। लेकिन एक मनुष्य ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, एक बात और भी ध्यान में रखना, अपन बोलते हैं गुण पर्याय, मैंने गुण ज्ञान गुण भी पर्याय, मन ज्ञान सदज्ञान अनुज्ञान, दर्शन गुण की पर्याय, चक्षु दर्शन है चक्षु दर्शन, एक गुण की पर्याय है। और अपन कहते हैं गुणों का समूह द्रव्य है, ठीक है। तो द्रव्य पर्याय किसे कहें, गुणों के समूह की पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो गुणों की पर्याय को पर्याय कहते हैं, मैंने अर्थ पर्याय कहते हैं, तो व्यंजन पर्याय किसे कहें, गुण पर्याय कहते हैं, तो द्रव्य पर्याय किसे कहें। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और गुणों का समूह जो द्रव्य है उसकी पर्याय को द्रव्य पर्याय कर देंगे, नहीं द्रव्य पर्याय नहीं, दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं, एक द्रव्य की पर्याय को नहीं कहते हैं, समझ रहे। एक द्रव्य की पर्याय को द्रव्य पर्याय नहीं कहते हैं, दो द्रव्य मिलना चाहिए, यदि वे एक ही सी जाति के दो द्रव्य मिले तो उसे समान जाति द्रव्य पर्याय कहेंगे। जैसे एक घड़ा मिट्टी, क्यों मिट्टी तो अनंत परमाणु में, तो एक एक परमाणु द्रव्य है, लेकिन वो सब एक से हैं, तो उनकी मिली हुई पर्याय वो घड़ा कहते हैं, इसलिए वो समान जाति के जो पर्याय है। और ये मनुष्य पर्याय इसमें आत्मा भी मिला है और पुद्गल भी मिला है, तो असमान जाति के द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं अथवा द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो इनने व्यंजन पर्याय का उदाहरण लिया, द्रव्य पर्याय का उदाहरण लिया, कि नार की मनुष्य देह ये व्यंजन पर्याय है। तो वो ये कहते हैं कि एक जीव इन अनेक पर्यायों में जाता है, तो वो अनेक है कि एक वो जीव, तो कहते हैं कि एक एक पर्याय की तरफ से देखो तो अनेक है, मनुष्य अलग है, देव अलग है, नारी अलग है, मोक्ष अलग है, संसार अलग है, और यदि द्रव्य की तरफ से देखो तो एक ही द्रव्य सब पर्यायों में गया है, इसलिए वो अनन्य है, वो अन्य अन्य वाला बोल है, तो उसको हर बात में अन्य और अनन्य पर गठित करना चाहिए। मेरी बात को इतना मैंने समझ लिया आपको, तो ध्यान से इसका मर्म आपके ख्याल में जम जाए तो घर पर एक दफे गुरुदेव का वो टेप सुनना, कहने हैं ना जिसने ये देखना फिर उसके लिए आएगा कि उनने वहां पर अन्य और अनन्य सब बिल्कुल उन्हें गोल कर दिया है। इसलिए हमें कैसा लगता है जैसे उसमें से वो है ही नहीं, वो है ही नहीं कह रहे हैं, वो ये अनन्य नहीं है इसके लिए कह रहे हैं, अनन्य नहीं है, दोनों एक ही नहीं है ये कहना चाहते हैं और उसे कहते हैं नहीं है, दोनों अलग अलग हैं ये कहना चाहते हैं और उसे कहते हैं। अब अन्य और है में फर्क पड़ गया ना, अन्य तो ये कैसे निकालोगे आप, क्योंकि सब वो अनन्य वाला बोल कर रहा है ना, वे खुद ही कह रहे हैं वही पांच बोल हैं एक आदत स्पष्ट हो गया है, अब दूसरा भी आदत अनन्य वाला चलता है ना, तो वो उसी के प्रति करने वाला चल रही है। इसलिए बहुत लोगों में का ध्यान ऐसा नहीं जाता है, यहां भी जो लोग बैठे हैं मैं समझता हूं बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, सबका ही नहीं गया होगा ये तो मैं नहीं मानता, आगे गुरुदेव के हिसाब से अभ्यासी बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों का भी नहीं गया होगा, इसलिए मेरे को विकल्प आया कि मैं इस बात को आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करूं, लेकिन उसकी महिमा आएगी यदि आप उसे देखेंगे घर पर जाके तो अब अपना असली नहीं आना चाहिए।
एक चीज समझे तो दूसरी चीज
समझ के
साथ साथ में लेकर
चलता है, दोनों चीजें आना में आने का मैं ये कह रहा हूं कि वो जो मेन स्पीकर उन्होंने कहा ना मैं इसकी बात कर रहे हैं, अब ये कह दिया कि हम इसकी बात कर रहे हैं फिर बार बार उसकी बात करेंगे भी नहीं, उसका नाम न ना लें तो अभी ये उसी की बात समझना उसी की बात है। जैसे उन्होंने कहा कि देखो उस लड़के की शादी हो रही है, वो लड़का बहुत बुद्धिमान है बड़ा लिखा है अच्छा है, अब एक उस लड़के की बात हो रही है, अब बाद में हम उस लड़के का नाम भी नहीं लेंगे कुछ नहीं कहेंगे और हम बताते रहेंगे कि मैंने कोई एकदम होशियार है, तो आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप समझे आप यदि ये भूल जाएंगे तो उस प्रसन्नता और निंदा का कोई मतलब नहीं है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है इसका अपन को यदि पता नहीं रहता अपन ने तो ऐसा कहने में होता है, और तो गुरुदेव जैसे वक्ता के साथ बहुत होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं उनकी शैली आपको समझनी पड़ेगी क्या, कि गुरुदेव किस तरह से बात करते थे, जब तक वो शैली आप नहीं समझेंगे तो उनकी वाणी का मर्म आप नहीं समझ सकते हैं और कई जगह भ्रमित भी हो सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं दूसरी जगह जाकर कि हमने गुरुदेव का प्रश्न सुना है, उन्होंने क्लियर कहा कि वो है ही नहीं, मनुष्य है ही नहीं, त्रंथ है ही नहीं, नायकी है ही नहीं, वो शकोरा है ही नहीं, वो है ही नहीं, अरे वो अन्य इसके लिए था, वो है नहीं के लिए नहीं था, वो अस्थि और नास्ति का वर्णन नहीं है, जैन सुनने क्या क्या बने रहना पड़ेगा, यहां बनिया बने रहने से काम नहीं चलेगा, पंडित बनना अब अपने देखो गाथा चलती है अस्सी में, देखो उसकी ऊपर का जो हेडिंग मसालो जिसे आप बोलते हैं वो क्या लिखा है, अथ कथम मया विदेतव्या मोह बाहिनी इति उपाय मालूचती, कहते हैं अब मोह रूपी सेना को कैसे जीतना इसके उपाय की चर्चा करते हैं आलोचना करते हैं, अब इसकी बात करते हैं कि उस मोह को कैसे जीतना, इसके पहले ही पंक्ति पढ़ो आप संस्कृत में बिल्कुल इसके पहले की है ना, एक सौ पेज नंबर एक पेज पीछे पड़ा साफ रखे ना घटना भी निकाल सकते हो, पर एक एक गाल नवासी नहीं गाता उसकी संस्कृत की अंत में
अध्यात्म नवनीत है, अध्यात्म नवनीत में से लिखा
उसमें भी होगी चाहे वो हिंदी होगी, हाँ वो हिंदी है तो कोई बात नहीं, अब देख क्या लिखा आया अतो माया मोह बाहिनी विद्याय बद्धा कक्षेयम, इसका अर्थ
इसलिए अब मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कसी है।
अच्छा,
उन्होंने कहा था ना कि यदि तुम मोह को नहीं जीता तो कितना ही तुम अशुभ भाव का त्याग करना और कितना ही शुभ भाव करना, गुरुदेव की भाषा में कहूं तो इतना क्रियाकांड पालना कि नौवें गृहिक में जाकर तुम पैदा हो, और नौवें गृहिक में पैदा हो, इतना उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव करना और सर्व प्रकार के अशुभ भावों का त्याग कर देना, तो भी यदि तुमने क्या मोह को नहीं जीता तो तुम शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करोगे। ये कहा था ना, और अब वो ये कहते हैं कि अब मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कसी है। गद्दा कसे हम जो शब्द है संस्कृत का, जो संस्कृत भाषा जानते हैं उनको उसका मर्म का मन आया, मैं कमर कसके तैयार हूं युद्ध में, बोलते कि नहीं बोलते, अरे आजकल कमर नहीं कसी जाती हो, ऊपर से बम फेंकने उन्होंने कमर कसने क्या करी देखो पुराने जमाने में जो युद्ध का स्वरूप होता था, कमर कसके जाना पड़ता था, चाहे आप अखबार देखते हो या महाराणा प्रताप, लेकिन वो युद्ध के मैदान में जाते हैं तो कमर कसके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने कमर कसी है। अब वो कहते हैं कि मुझे किस प्रकार अत्र कथम मया विजय तत्या मोह बाहिनी, मुझे मोह की सेना को कैसे जीतना, उसके उपाय की आलोचना करते हैं। आलोचना करते हैं, आलोचना होने के लिए बुराई नहीं होता, अच्छी तरह से उसके बारे में मंथन करना, विचार करना, उसको बोलते हैं आलोचना करना। अब जो जान से अरहंतम दत्त परिचे एक बात तो इसमें आप बहुत स्पष्ट देखो, गाथा में ही देखना, इसमें जो अरहंत को दुर्गुण पर्याय से जानेंगे उनका मूल नाश होगा ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा कहा है कि जो अपने आत्मा को जानेंगे उनका मोह नाश। रघु प्रगिनन ने गांधी जी की मेरे भी कहा ना, माने अरहंत के करने से नहीं होगा, यही अर्थ है ना, उनके लिए नहीं लेगा, तो फिर हम काय को अरहंत के रहने झगड़े में फंसाते हो, परंतु का विचार ही क्यों करते हैं, वो कहते अरहंत के द्रवण पर्याय को जानोगे तो तुम आत्मा के द्रवण पर्याय को जानोगे, तो आत्मा को जानोगे, तो ये तो आत्मा को जानने के उपाय के रूप में बात बताई है, लेकिन मोह का नाश तो आत्मा को जानने से होगा। ये सात तत्व तो समझाते हैं, तो नाव की बात करते हैं ना, नाव में पानी तो छेद हो जाना तो आश्रव है, कुछ पानी आना तो भर जाना तो बंद है, फिर छेद का बंद हो जाना तो संभल है, तो पानी का निकाल जाना तो निर्द्रा है, और पूरा पानी निकाल जाना तो मोक्ष हो जाए, समझाते ना, तो ऐसा मोक्ष भैया नाव को होगा तुम्हें नहीं होगा। ये उदाहरण समझाया था, अब तुम्हें आत्मा पर समझना है, तो अनंत भगवान तो उदाहरण के रूप में आए हैं, क्योंकि वो कहते अनंत का और आपने सीधा अपने आत्मा को ही जानने की कह देते ना, कि जो अपने आत्मा को त्रिगुण पर्याय से जानेगा उसका मोह नाश हो जाएगा, इतना ही कह देते, इसमें क्या दिक्कत थी। तो वो कहते हैं जो नीचे टीका में लिखा है, पहली पंक्ति बड़ो टीका की, पहली नहीं तीसरी पढ़ो, अरहंत का स्वरूप अंतिम ताव को प्राप्त होने वाले सोने के स्वरूप की भांति सर्व प्रकार से स्पष्ट है। कहते वो अनंत का स्वरूप हमारा नहीं है, हमारा दुर्गुण से तो ठीक है, पर्याय में मेरा बचेला है,
वो आइए मैं गुरुदेव का भी पढ़ के सुनाऊं। मैं गुरुदेव का पहले ही बात ये लिखा हुआ है, फिर निकाले देखो परमात्मा इसमें से जो किताब है तो लिखा है कि इन दोनों में अंतर है। अंतर तो नहीं है, नहीं लिखा क्यों बता रहा हूं मैं, फिर बाद में कभी बताऊंगा। देख लो अंतर है ऐसा, कोई नीचे की पंक्ति है बिल्कुल। आध्यात्म सुखानी स्वामी कहते हैं तो निकाल पाएगा इसमें आएगा कानी स्वामी का प्रयोग करते हैं उसमें
होगा
पुण्य पाप की सावधानी का भाव और ज्ञानानंद स्वभाव की असावधानी का भाव मिथ्यात्व है। वहां पर जीव को बचाने अथवा मारने की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा पर जीव को बचा अथवा मार नहीं सकता, तथा आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है। ये ऊपर का हुआ। अनंत और आत्मा समान है, अंतरंग स्वभाव में फेर नहीं है, पर्याय में फेर है। संसारी को अल्पज्ञता और राग द्वेष है, और भगवान को सर्वज्ञता और वितरागता है।
इस
स्वभाव में अंतर नहीं
है, इसमें ही बताना है। पर्याय में अंतर है, एक गुरुदेव ने भी अपने प्रवचन में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा।
प्रचलित धारणा यही है कि गुरुदेव ये कहते हैं कि अंतर नहीं
है। धारणा यही है ना,
धारणा
इसलिए मैं बता रहा हूं। अभी मैं आपको और ज्यादा स्पष्ट करूं, जब मैं यहां पर जब देवलाली नहीं बनी थी, ये रचना नहीं हुई थी, तब भी हम देवलाली में आया करते थे, पेड़ लगाते थे, राम संकल्प में ठहरते थे, और वो कौन सी उनमें हम प्रवचन करते थे, खानाबाड़ी का भवन में उसमें प्रवचन करते थे है? और उधर रामी जो है श्रीमन का आश्रम, वहां भोजन भोजन नहीं था, उस वहां हम सेवा करते थे। तो उस शिविर में ये अश्विनी गाथा मैंने ली थी, और मैंने इसमें कहा था कि दोनों में ये जो अंतर की बात लिखी है, तो इनकी पर्याय अल्पज्ञ है और सर्वज्ञ है, और अपनी पर्याय अल्पज्ञ है। तो तुरंत ही विरोध किया था कि नहीं नहीं, उसने क्लियर ये लिखा है कि दोनों में बाद चला निपट गया था, तब कुछ ये भी बात नहीं है। क्या अंतर है कि नहीं है, तो मैं दोनों समझाऊंगा आपको, घबराना नहीं। अंतर नहीं है ये भी अर्थ है, और अंतर है ये भी है, और दोनों का अर्थ क्या है और दोनों का प्रयोजन क्या है, उस सब मैं आपको स्पष्ट करूंगा। लेकिन आपका ध्यान उस पर आकर्षित हो जाए, इसके लिए मैं इतनी बात आपको कह रहा हूं कि आप इस पर ध्यान रखना। क्या वो कहते हैं कि अनंत भगवान को जानने की जो हम बात तुमसे कह रहे हैं, तो यहां तो कहते हो पड़े जानो ही मैं, और पड़े के झड़े में पड़ते ही क्यों, और पड़े के तुम करते ही करता नहीं हो, पड़े के तुम्हें कोई लेना ही देना नहीं, अपने आत्मा को जानो तो तुम्हारा वो नष्ट हो जाएगा। आत्मा की अनुभूति होगी ना, तभी तुम वो जाएं लब्धि में, तब जाके तुम्हारा दर्शन होगा। और तुम परमात्मा को अनंत के देवगुण बजाय जानते रहोगे तो उसको तो समझ दर्शन होने वाला नहीं। एक आप इतनी बात और बहुत अंतर समझते ही है ना, गुरुदेव ने बहुत अपन को बताई है कि पर्देव की बात नहीं कही, तो उन्होंने पर्देव देखा है वो शुरू करा रहे, तो उसके नीचे उन्होंने हेतु दिया कि उनका जो स्वरूप है वो अत्यंत स्पष्ट है। ये देखो जब अपन अपना सोना शराब के यहां बेचने जाते हैं, तो वो कहता है कि भाई इसके लोग इतने पैसे में जाएंगे, आधा भाव तो अपन कहते क्या भाव कह रहे हो, सोने का भाव बाजार में हम तो ये देखा है ये पड़ा है, वो तो पड़ा होगा, लेकिन वो जो सोने का भाव तूने बाजार में पड़ा था ना, वो स्वतन सोना है, वो 24 कैरेट का है, और वो उसने अपनी कसौटी पर इसे कस के रखा है। देखो ये सोना इसका भाव है, और तुम्हारा सोना उसके बगल में कश्ती बताता है कि भाई तुम्हारा सोना है, दोनों में कोई फर्क है? मैं तुम्हारे सोने में मिलावट बहुत है। तो अरहंत का वो कसौटी पे लगा हुआ सोना वो अरहंत का स्वरूप है, और हम अपने आत्मा को भेजते हैं तो इसमें बहुत विकृति मिली हुई है, समझे ना। मूल राग देश की पर्याय मौजूद है तो वो अंतर है, वो ख्याल में आएगा ना। तो कहते हमने हम आत्मा का ही कह सकते थे और वो समझ में भी आ रहता था, लेकिन समझाने की सुविधा के लिए अरहंत काम कहते हैं। जब सबसे पहले सर्राफी का दुकान किसी को करनी है और वो जो सर्राफ के पास जाए उसका बाप कहेगा इसको बेटे को सर्राफी का धंधा सिखा दो, तो सबसे पहले सर्राफ को क्या सिखाना चाहिए? ये सिखाना चाहिए कि स्वतंत्र का सोना कैसा होता है, उसकी परख करना तेरे से आना चाहिए, उसे वो बताना चाहिए ना। उपाय तो यही है, पर आज का दादा जी क्या बताता है कि शुद्ध सोना बेच के आज तक कोई करोड़पति नहीं हुआ, दो रोटियां कमाना भी मुश्किल है। क्यों? बाजार से खरीद लाओ तो शुद्ध सोना, अगर बीच में जाओ तो उतने ही पैसे नहीं मिलेंगे, कमाई तो बहुत दूर की बात है। उसी दुकानदार के पास दौड़ के ले जाओ तो वो भी नहीं देगा, यदि कमाई करना है तो अशुद्ध सोने से ही करो, वो ही खरीदना बेचना सीखो। ये कौन है वो बेईमान? लेकिन जिसको असलियत में उसको सदाव बनाना है उसकी ड्यूटी तो ये है कि वो सोने की परख क्या दे, बाकी चालाकियां सिखाना ये बोली ये व्यापार सिखाना थोड़ी है, ये ठगना सिखाना, ये तो उसे गलत लाइन पर डालना है, ये तो उसके जेल का मार्ग है, तो पकड़ा जाएगा तो जेल में जाएगा। क्यों? तो वो कहते हैं हम अरहंत की बात करते हैं इसलिए क्योंकि उनका वो सोना सौ कर चुका है। हमें तुम्हें पहले आत्मा का स्वभाव कैसा होता है हमें ये समझाना है। तो जिनका आत्मा द्रव्य से भी शुद्ध है और गुण से भी शुद्ध है और पर्याय से भी शुद्ध है, उस गुण का आत्मा समझाना पड़ेगा ना, अब वो अनंत का है वो हमने समझाए, तो समझाया तो अंतर समझाया ना, हमें हाँ अंतर समझाया, जिम्मेदारी पे भरा हुआ है। अब वो दूसरा अर्थ क्या है? अंतर नहीं है, ये भी लिखा है पढ़ो, हाँ जी मैं पढ़ता हूं। जो अनंत भगवान को द्रव्य रूप से गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है वह वस्तुतः अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं। संस्कृत में भी लिखा निश्चय से दोनों में अंतर नहीं। तो अब क्या करे? अंतर नहीं करे कि जब हमने वो तुम्हें शुद्ध सोना सिखा दिया ना अरहंत से, तो फिर कहा कि तेरा आत्मा स्वभाव से ऐसा ही है, मान लो पर्याय में अभी विकृति हो तो हो, लेकिन अभी विकृति के काल में वो अविकृत पड़ा हुआ है। योग विद्यार्थी को देखकर प्रतिभाशाली को देख करके और उनमें जो भला पता गलतियां कर रहा हो, लेकिन योग गुरु कह देता है नहीं बहुत अच्छा लड़का है इसे रखो पढ़ के बहुत अच्छा विद्वान बन गया, विद्वान के लोग बात कदर नहीं करते और सीख रहे कि बहुत अच्छा विद्वान बनेगा। तो तुमको हम ये बताएंगे कि कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही तेरा आत्मा स्वभाव से है। अब वो अहंत का तो स्पष्ट है स्वरूप तो अभी दिख जाएगा, और अपना अब वो अहंत के समान ही है इस तरह से करके देखें तो दिखेगा। आपने देखा ना एक वो आकर ऐसा आता है कोई फोटो जो ऊपर से दिखता नहीं, फोटो मोटू खाली दिखता है और उसमें निहार है जमाओ तो थोड़ी देर तक निगाह जमाए रहो तो वहां पर भगवान की मूर्ति थी। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? तो वो अनंत भगवान का स्वरूप इसलिए बताया कि जो अनंत को त्रिगुण पर्याय से जाने। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्याय से जाने माने क्या? कि सर्वज्ञता को जाने, वो ज्ञान गुण की जो निर्मल पर्याय है उसको पहचाने। उसको पहचाने बिना तेरा काम नहीं होगा। और ऐसा सर्वज्ञ सर्वज्ञ तुम अभी नहीं है पर्याय में, लेकिन तुम सर्वज्ञ स्वभावी है। तेरा स्वभाव ऐसा बनने का है। एक दिन तेरी पर्याय में ऐसी सर्वज्ञता का व्यक्ति से प्रयोग होगी। क्यों ये सिमी का हमने ये बात करी कि हमसे पहले तो ये कहते आए सब बड़ा बड़ा करके कि पर को नहीं जानना, पर को नहीं जानना, पर को नहीं जानना। और यहां सबसे पहले अनंत तो पर है ना, हम तो पर अनंत है नहीं अभी वर्तमान पर्याय में। तो जो दूसरे को जानना पड़ेगा और उसके जानने का उद्देश्य है। और मोहन के नाम से ले दीजिए कि हमने क्यों कही मोहन का नाम हुआ? क्यों आशीर् का था मैंने कहा कि अनंत को जाने का जरूर कौन से पर्याय के लोग मोहन नाम तो सबको पता है। क्यों? लेकिन देव को तो कहां लिखा? मेरे मतलब सुनिए, हमारी देखने की दृष्टि कितनी कमजोर होती है, वो हम भूल ही जाते हैं कि उनने तो ये कहा कि वो अपने आत्मा को जानेगा। जब मुनाफा और लाभ कब होगा? कि जब वो उसने ये सीखा, क्या सीखा? और अपने सोने में जो पहचान लिया कि इतना माल है और इतना इसमें जो यदि आप कुछ भी कहो, नाम की एक किताब है कहानी की, उस किताब में एक कहानी दी है। एक गवेली था, बहुत होशियार था, बाजार में बहुत प्रसिद्ध था। और जब वो कैंसर हो गया, मरने लगा, तो घबराया बहुत। तो उसने अपनी संपत्ति बेच बांध के और एक लाल खरीदा, लाल माने रत्न खरीदा, कुछ बहुत बढ़िया। और अपनी पत्नी को देकर के बोला कि देख, मैं तुझे दो लाल दे रहा हूं, जब तेरा बेटा बड़ा हो जाए तो तू ये लाल इस लाल को दे देना। समझ रहे कभी ना बुद्धि खराब हो गई, एक दे रहे दिखा रहे एक और कह रहे दो लाल दे रहा हूं। क्यों? एक ही तो है जी, एक जे अचेतन लाल, एक जे चेतन लाल, दो लाल में तेरे को सौंपे जा रहा। समझ में आया ना? तो तू ये लाल को सुरक्षित रखना, और जब ये लड़का बड़ा हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, पढ़ने में होशियार हो जाए, काम धंधा करने लायक हो जाए, 35 वर्ष का हो जाए, तब तुम ये लाल इस लाल को सौंप देना। ऐसा कहेंगे बेटी मरे, अब घर में जो पैसा खाली करके घर में जाए, बहुत जब नहीं बचा कुछ नहीं तो लाल को तो संभाल के रखी थी वो बेचारी, दूसरे के घर में चौका बर्तन करने लगे, पैसा अपना पेट पाल दी थी, अपने बेटे को पढ़ा रही थी, लिखा रही थी। तो बेटा एक दिन बोला कि माँ मैं नौकरी करूं, तुम्हें पढ़ा लिखा है नहीं, नहीं कुछ लिखा नौकरी मिले, नौकरी का क्या मिलेगी? बेटा तुम धंधा करें नहीं, दवेली के बेटे नौकरी नहीं करते। क्या तुमने दवेली की पत्नी छोटा वर्तन करती? बेटा बाप का होता है बाजार में, तो उसी को जानते हैं सब। तो तू नौकरी नहीं करेगा, बिजनेस करेगा। पागल हो गई है, बिजनेस के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है। कि बेटा अपने पास पूंजी की क्या कमी है? तेरे पिताजी ये रत्न मुझे देके गए थे, बहुत पैसों का है, करोड़ों का है,
मुझे बाजार में बेच पूंजी आएगी बिजनेस करना। वो यहां गया कि यहां तो अच्छे पैसे आएंगे नहीं, तो मुंबई जाकर के बेचना चाहिए। तो वो रत्न लेकर के मुंबई चला गया। वो बाजार में दिखाता था तो कोई कुछ बताता, कोई कम ज्यादा बताता रहता, बोले तो सब लूटने को फिरते हैं। वो देखता था एक बच्चा भोला वाला है तो समझता नहीं है ना, तो हर एक आदमी लूटने को फिरता है बाजार में, तो कौन बैठे। तो वो हर एक डबेरी देख रहा था उसे दूर से, यदि हर दुकान पर जाता है तो वो उनसे वापस ले आ जाता है, बेचता है तो उसने क्या लाल बेचना है क्या, वो तो ठीक है ठीक है। तुम कहां से आए हो, क्या मैं जयपुर से आया, तुम किन लिए बच्चे हो, तो उसने अपने बात का नाम बताया। अच्छा अच्छा भाई, बहुत दिन से नहीं आए, वो तो जब यहां बंबई आते थे तो हमारी आदत में ही सब माल खरीदते बेचते थे, क्या बात है, सभी लगे तो ठीक है उनकी सभी जानू का तो शुरुआत हो गया। अच्छा अच्छा, तुम उनके बेटे हो, तो ये तुम्हें लाल बेचना है क्या। कि बेटा अभी ये लोग नहीं खरीद पाएंगे तुम्हारे इस लाल को, जब सीजन आएगा तो परदेश से व्यापारी आएंगे, वे उस वक्त तुम्हें इस लाल की अच्छी कीमत मिलेगी। तुम ऐसा करो कि इस लाल को एक तिजोरी में बंद करो, बंद करके चाबी रजिस्ट्री से अपनी मां के पास घर भेज, ऊपर से वो लगा करके अपने नाम का लिख के सील सिक्का लगा करके पैक पैक कर दो। खुद की तिजोरी में उन्होंने कहा कि मजदूर बना रहे ये मेरा अपना लाल छीन लेंगे, अपना रख लेंगे, कब बदल देंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम चाबी अपनी मम्मी के पास ले दो, अभी चार महीने में इंतजार करना पड़ेगा, चार महीने बाद व्यापारी आएंगे तब तुम्हारा लाभ दिखेगा। तो जब तक खाएंगे पिएंगे क्या, हम है ना, कहीं नहीं हम दूसरे का नहीं खाते पीते, ऐसा नहीं लेते, कहीं नहीं नहीं तुम दूसरे का क्यों खाओगे, जब तुम्हारा वो लाल बिकेगा करोड़ों रुपया आएंगे तो तुम दे देना। तो उसको रखा और सब तरह से व्यवस्था बनाई, दुकान पे सब मुनियों को कहा कि जितने माल बिकने आए इसको बताना, खरीदने आए जो कुछ करो वो इसको बताए बिना दिखाए बिना, इससे जान पहले कराए बिना नहीं देना। और धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग देना शुरू करी, और चार महीने में वो एकदम पक्का जबरेजी बन गया, समझ गया। फिर उन्होंने कहा अगर दादाजी वो हमारा रत्न बिकवा देते हैं तो हम अपना व्यापार करते कुछ, उन्होंने कहा अब तो तुम जबरेजी बन गए हो, अब तुम हम क्या बिकवाएं, उठाओ अपना उठाओ मम्मी से चाबी मंगा लो, खोलो चाबी मंगाई ताला बैठा देखो मौजूद था सील कैसे खोल के निकाल के इन्हें लाल को निकाला और निकाल के देखा, एकदम जोर जोर से रोने लगे, निकाला क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं। और उसने लाल को समुद्र के किनारे पर फेली थी, ऐसा समुद्र में फेली जैसी कोने में धोखा दिया, क्या किया हुआ धोखा दिया, लाल बदल लिया। वो शेर जी की जब बुद्धि उल्टी हो गई थी ना, तो उनने नकली लाल खरीद लिया था लाखों रुपया दे करके, समझे ना। और ये चार महीने में इतना होशियार हो गया कि इन्हें पहचान लिया कि जैसे उनके नकली धोखे से गए नहीं है, बाजार में पैसा भी किसी ने नहीं लगाए थे। अब वो बोला कि वो नकली लाल था और तुमने मेरे को चार महीना खाना खिलाने पिलाने सब करके कर्जदार बना दिया, हमने कहां से तो कम कर तुम्हारा पैसा। नहीं बेटा, मैंने तो कहा था वो सत्य, क्या कहा था कि हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है कि तुम्हारे इस लाल की कीमत हम चुका सकें, और तुम कहो तो एक उपाय मैं बताता हूं, मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूं, तुम मेरे यहां गोद रह जाओ तो तुम्हारा कर्जा चुक जाए, मैंने तुम अपने को बेच दो,
बेच
देना उनने कहा कि हमने तो इस पेटल लाल की परख की थी, कि जिसका बाप सारी जिंदगी जमेली रहा और बोली पहचान पाया और धोखे से उसने करोड़ों में से ले लिया, वो जो चार महीने की ट्रेनिंग से इतना होशियार जमेली बन गया कि उसने पहचान लिया और इतना कॉन्फिडेंस कि उसे समुद्र में फेंक दिया। क्या इस चेतन लाल की हमने इज्जत की थी, समझ रहे? तो असली चीज तो वो है ना, जैसे का मतलब पहचानना है, वो अरंत का जो शब्द है वो असली वो है और उसकी हमें पहचान चाहिए। पहचान तो असली सोने से ही होगी, उसकी जो कसौटी पर वो असली सोने की लैन है ना, उससे ही उसकी पहचान होगी। और वो कितना सोना ये खोट है, इसमें कितनी खोट है, इसकी पहचान जब तक अच्छी तरह नहीं होगी तो वो कमा नहीं सकता, उसमें ठगाया जा सकता है ना। लेकिन होगी तो सही बात जान लेगा तो उसको कहेगा कि तुम्हारी इतनी कीमत नहीं है। तो ऐसे ही अनंत भगवान वो कसौटी का पत्थर है जिस पर वो हुआ है, और हमारा आत्मा अनंत के जैसे ही है, ऐसा समान है, वो हमारा स्वभाव समान है। वर्तमान की परिवार में जो प्रगत परिवार है वो समान नहीं है, और समानता के कई और अनेक अर्थ होते हैं जिन्हें मैं कल परसों में आपको बताऊंगा।